अध्याय आठवां। विशालकाय क्रोधित बंदरों का घुड़कता चीखता हुआ झुंड एक नवजात बछड़े को घेर कर बैठा था, जो असहाय हो रोते कांपते अपनी माँ के लिए रंभाने लगा। गांव से गुजरते हुए मैंने ये दृश्य देखा। मैं सहायता करने के लिए एक उपयुक्त छड़ी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाते हुए भागी आई। निर्भय प्रेम से वशीभूत उसने अपने सिंगों से बंदरों को खदेड़ दिया। फिर ममता भरी आंखों से बछड़े की ओर देखती हुई वो स्नेह से उसे तब तक चाटती रही जब तक वो बछड़ा शांत होकर उसके थनों से दूध पीने के लिए तैयार नहीं हो गया। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की एक शिक्षा का स्मरण हो आया। उन्होंने सिखाया कि हमें विनम्रतापूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अपने माँ को पुकारता है। क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आया था जहाँ नम्रता को प्रायः दुर्बलता माना जाता है। मैं गंभीरता से विचार करने लगा कि सच्ची नम्रता क्या है और वो कैसे कार्य करती है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे शीघ्र ही उस विषय पर एक अविस्मरणीय शिक्षा मिलने वाली थी। एक दिन श्रीपाद बाबा असीम और मुझे एक प्राचीन मंदिर में ले गए। अंदर हमने लाल पत्थरों से बने एक विशाल कक्ष और ऊंची छत को देखा। मंदिर लंबे समय से उपेक्षित था। धुंधले प्रकाश में बंदर सो रहे थे। बड़े बड़े काले चमगादड़ ऊंचे गुंबद के किनारों पर उल्टे लटके हुए थे और नीचे पत्थर के फर्श पर उनके मल के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हम मंदिर से निकलकर एक टूटे फूटे मार्ग पर चलने लगे जो अचानक समाप्त हो गया। सामने 2 फुट चौड़ा एक खुला नाला था। श्रीपाद बाबा ने हंसते हुए हमें उकसाया, चलो मैं तुम्हें एक विशेष मंदिर दिखाना चाहता हूँ। हमने नाले पर पड़े एक पत्थर पर चलकर उसे पार किया। कुछ दूर आगे चलकर हमने स्वयं को एक अजीब से घर में पाया। एक ओर बच्चे उछल कूद रहे थे और दूसरी ओर उनकी माँ धरती पर बैठी छोटे चूल्हे पर भोजन पका रही थी। ये कैसा मंदिर है, मैं सोचने लगा। एक छोटे से कक्ष में एक विश्वसनीय दृश्य देखकर मैं विस्मित हो गया। वहाँ एक वेदी पर राधा कृष्ण के विग्रह विराजमान थे। लगभग 2 फुट ऊंचे श्रीकृष्ण काले पत्थर के और राधा रानी चमकते कांसे की थी। वे अत्यंत प्राचीन दिख रहे थे। अजीब बात थी कि वहाँ रहने वाला परिवार अपने घर में स्थित इन सुंदर विग्रहों के प्रति उदासीन प्रतीत हो रहा था। परंतु जब हम निकट गए, हमने देखा कि फटे वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति भगवान को पंखा झल रहे थे। वे लगभग 70 वर्ष के छोटे पतले व्यक्ति थे और उनकी कोमल आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे। उनका सिर और चेहरा मुंडा हुआ था और वे अत्यंत दुर्बल लग रहे थे। कक्ष से शीघ्रता से बाहर आकर उन्होंने अपने सभी अतिथियों के चरणों पर प्रणाम किया। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने कृतज्ञता भरे आंसुओं के साथ बार बार हमारा स्वागत किया। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, वे रुक रुक कर बोले, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर उन्होंने कक्ष में विराजित विग्रहों की ओर संकेत किया, कृपया राधा कृष्ण से मिलिए, श्री कृष्ण ने आज आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आप उनके प्रिय मित्र हैं। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं केवल उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। सेवा करना ही मेरा एकमात्र सौभाग्य है, कृपया मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। घनश्याम बाबा से ये मेरी पहली भेंट थी। जब श्रीपाद बाबा ने उन्हें बताया कि कैसे वृंदावन पहुंचने के लिए मैं इतनी दूर से यात्रा करके आया हूं, तो घनश्याम बाबा आश्चर्य से रोमांचित हो उठे। श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है, इसलिए आप इतने समुद्र और महाद्वीप पार कर सुदूर देश से यहाँ आए हैं, घनश्याम बाबा ने कहा। वे लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः आप आ ही गए, उनकी वाणी भर्रा उठी। हाँ, आखिर आप आ ही गए। घनश्याम बाबा का छोटा वयोवृद्ध चेहरा सौम्य और कमजोर प्रतीत हो रहा था। उनकी छोटी धुंधली आंखें, गोल नाक, पतले होंठ और हल्की झुर्रियां उनके चेहरे पर एक स्थायी उदासी के भाव उत्पन्न करते थे। उनकी वाणी के धीमे स्वर में भी यही भावना गूंजती थी, किंतु इन सबके पीछे उनकी आत्मा एवं हृदय से आनंदमय प्रेम से परिपूरित थे कि जो भी उनके संपर्क में आता, वे उसके जीवन को भी उसी प्रेम से भर देते। हमें अपने विग्रहों के सामने खड़ा देख घनश्याम बाबा हर्ष से फूले न समाए। मैं उनके साथ और समय बिताने लगा। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे मैं उस फूटे टूटे फुटपाथ से होकर इस एक कक्ष में मंदिर में आता। मुझे उनका संग बहुत अच्छा लगता। मैं जब भी आता वे एक ही स्नेह भरे अभिवादन से मेरा स्वागत करते। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, और वे इस पर अमल भी करते थे। प्रेमपूर्वक वे अपना सब कुछ बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को दे देते। मैं भी ये गुण प्राप्त करने के लिए लालायित था। एक दिन प्रातः जब मैं और घनश्याम बाबा अकेले बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि वे पहली बार वृंदावन कैसे आए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। मेरी कहानी का कोई महत्व नहीं है, वे बोले। फिर उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, किंतु एक पापी के ऊपर श्रीकृष्ण की कृपा की कहानी सुनने योग्य है। धीरे से वे मुझे बताने लगे कि कैसे उनका लालन पालन एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। जब मैं एक युवक था, मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन की यात्रा पर आया। यहाँ पर भगवान की कृपा के जाल ने मेरे हृदय को बंदी बना लिया। मेरे पास वापस जाने की शक्ति नहीं थी। कथा सुनाते हुए घनश्याम बाबा नम्रता से झुकते गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार वाले उनके द्वारा एक उज्ज्वल भविष्य को छोड़कर वृंदावन में रहने के निर्णय से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मुझे डराया कि वे मुझे अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देंगे, किंतु मैं अडिग रहा। श्रीकृष्ण ने मेरा हृदय चुरा लिया था, उन्होंने कहा। धरती पर सोते और प्रतिदिन वज्रवासियों के घर से भिक्षा में मिली सूखी रोटी खाते हुए उन्होंने कभी अपने पुराने ऐश्वर्य की अभिलाषा नहीं की, अपितु उन्होंने कहा, मैं कृतार्थ था कि मुझे श्रीकृष्ण के घर में ही उनकी सेवा करने का अवसर मिला। घनश्याम बाबा की गहरी आंखें एक सहमे हुए बालक के समान इधर उधर देख रही थी। लंबे समय से मेरा हृदय अर्चा विग्रहों की आराधना करने के लिए लालायित था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन निकट के एक उद्यान में एक पेड़ के नीचे बैठकर मैंने अंगुली से मिट्टी पर श्री राधा लिखा। मैं दिन भर पुष्पों, गीतों और प्रार्थनाओं से मुलायम धूल में लिखे हुए उस नाम की पूजा करता रहा। अंततः सूर्यास्त के समय मैंने अपने हाथ से राधा रानी के नाम को मिटा दिया। घनश्याम बाबा चुप हो गए और अपने प्रिय विग्रहों को निहारने लगे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। एक लंबी चुप्पी के पश्चात उन्होंने कथा को जारी किया। जहां वो नाम लिखा था वहां भूमि पर हाथ फेरते हुए मुझे कोई सुनहरी वस्तु दिखाई दी। मैं विस्मित हो उठा। ये क्या है, मैंने सोचा। मैं तब आऊंगा जब यहां पर कोई नहीं होगा। अगले दिन प्रातः मैंने अपने हाथों से उस स्थान पर खोदा जहां मैंने राधा रानी का नाम लिखा था। घनश्याम बाबा के धैर्य का बांध टूट गया। उनके गालों से आंसू उमड़ आए और वे कपकपाती हुई वाणी में अपनी प्रेम भरी कथा का वर्णन करने लगे। जिस सुनहरी वस्तु का स्पर्श मेरे अंगुलियों ने किया था वो मेरी राधा रानी के सिर का ऊपरी भाग था। उनका विग्रह मेरे लिए धरती से प्रकट हुआ। उन्हीं के साथ धरती के अंदर ही श्रीकृष्ण का श्याम विग्रह था। उनके आधार पर उनका नाम लिखा था गोपीजन वल्लभ, अर्थात वे जो गोपियों को प्रिय हैं। उनकी वाणी भर्रा उठी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं उनके लिए कर ही क्या सकता था। घनश्याम बाबा ने प्रेम भरी दृष्टि से अपने विग्रहों की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किंतु उन्होंने स्वयं को मेरी देखरेख में रख दिया, इसलिए मैंने दिन रात उनकी सेवा की। आरंभ में लोग भोग लगाने के लिए कुछ भोजन दे जाते थे। लंबे समय तक मैंने एक पेड़ के नीचे उनकी पूजा की। फिर इस परिवार के बुजुर्गों ने गोपीजन वल्लभ को बेघर देखकर ये कमरा हमें दे दिया। मैं लगभग 50 वर्षों से यहाँ उनकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए मुझे घनश्याम बाबा के चरित्र से और प्रेरणा मिली। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मुझे अपना सब कुछ देते वे बस यही कहते। मैं दोनों मिलकर हम गोपीजन वल्लभ के लिए गाते या मोरपंख के पंखे से उन्हें हवा करते। प्रतिदिन वे जोर देकर कहते कि मैं उधर ही भगवान का प्रसाद पाऊं जो 3 वज्र रोटी होता। वज्र रोटी वृंदावन के लोगों का आम भोजन है। भले ही साधारण लोगों के दृष्टिकोण से वज्र रोटी एक सादी एवं रूखी रोटी होती है, लेकिन श्रद्धावान लोगों के लिए ये एक अमूल्य वरदान है। वृंदावन की धरती में उगे अन्न और भक्तों के हाथों से बनी तथा श्रीकृष्ण को अर्पित की गई वज्र रोटी अत्यंत पवित्र प्रसाद माना जाती है। कृतार्थ हो मैं घनश्याम बाबा की वज्र रोटी खाने लगा। एक दोपहर नदी में स्नान करते हुए मुझे एक परिचित साधु मिले। वे साधु बाबा मुझे सदैव आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज उन्होंने कठोर वचनों से मुझे डांट दिया। वे तट से ही चिल्लाए, तुम्हारे कारण घनश्याम बाबा भूखे रहते हैं, ये कैसे? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, एक वज्रवासी प्रतिदिन उनके लिए 3 रोटी लाता है, वही उनका एकमात्र भोजन है, और प्रतिदिन तुम उन्हें खा जाते हो, कितने स्वार्थी हो तुम। क्या? नदी तट से ऊपर आता मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, कृपया मेरा विश्वास करें, मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था। अगले दिन घनश्याम बाबा ने मुझे अपने सादे घर के फर्श पर बैठाया और प्रेम से वज्र रोटियां परोस दी। मैंने पत्तल को दूर हटाया। आज मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं खाऊंगा। ये सुनकर घनश्याम बाबा दुखी हो गए। तुम्हें खाना ही होगा, ये गोपीजन वल्लभ का प्रसाद है, उन्होंने तुम्हारे लिए ही रखा है, मैंने मना कर दिया। हाथ जोड़कर कांपते हुए उन्होंने विनती की, क्या मेरे पापों के कारण तुम मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हो? कृपया मेरी रोटी खा लो। मेरा हृदय टूट रहा था। मैंने उनसे याचना की, घनश्याम बाबा, मैं आपकी सारी रोटियां खा लेता हूं और आप भूखे रह जाते हैं। मुझे तो कहीं भी रोटियां मिल सकती हैं, किंतु आप ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते। किंतु मेरे पास और भी रोटियां हैं, घनश्याम बाबा ने जोर देते हुए कहा, कोई कमी नहीं है। फिर से उन्होंने पत्तल मेरे सामने रख दी। मैं भीख मांगता हूं, कृपया खाकर प्रसन्न रहो। फिर से मैंने उसे धकेल दिया। यदि आपके पास और रोटियां हैं तो मुझे दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने निराशा से कांपते ऊंचे स्वर में कहा। मैं तब तक रोटियां नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे और रोटियां नहीं दिखाएंगे। उन्होंने मेरा उत्तर देने के लिए आवाज और ऊंची की, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, रोटियां उस कमरे में हैं। मैं तुरंत उठकर उस कमरे में खोजा, परंतु वहां कुछ नहीं मिला। बाबा जी, यहां एक भी रोटी नहीं है, आप मेरे कारण भूखे रह रहे हैं, कृपया आप ही रोटियां खाइए। अपने निर्मल हृदय के भाव व्यक्त करते करते घनश्याम बाबा की आंखें भर आई। तुम गोपीजन वल्लभ के बंधु हो, किंतु मैं केवल उनके दासों का दास हूं। मेरे जीवन का एकमात्र आनंद भक्तों की सेवा करना है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि तुम इन रोटियों को खा लो। हाथ जोड़कर उन्होंने याचना की, एकमात्र इसी के लिए मैं जीता हूं, कृपया मुझे इससे वंचित मत करो। मैं उनके निस्वार्थ प्रेम को देखकर रो उठा। अपने प्रिय घनश्याम बाबा को आनंद देने के लिए मैंने सारी रोटियां खा ली। अगले दिन मैं सामान्य समय से 2 घंटा देरी से आया। ये सोचते हुए कि अब तक उन्होंने रोटियां खा ली होंगी, घनश्याम बाबा उल्लसित हो उठे, कृष्णदास, रथिन कृष्णदास, आखिर तुम आ गए, गोपीजन वल्लभ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ, रोटियां अभी भी वेदी पर रखी थी। घनश्याम बाबा ने समझाया, मेरे भगवान तब तक भेंट स्वीकार नहीं करते जब तक उन्हें एक मित्र का संग नहीं मिलता। श्रीकृष्ण ने ये रोटियां केवल तुम्हारे लिए बचाई हैं। इन शब्दों के साथ उन्होंने सारी रोटियां मेरे सामने रख दी। केवल जब तुम खाओगे तभी राधा रानी मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेंगी। मुझे पुनः पराजित होना पड़ा। एक दिन एक शुभचिंतक ने घनश्याम बाबा को नए कपड़े दिए। उन्होंने लजाते हुए उनसे दृष्टि हटाई और कहने लगे, ये शरीर भक्तों द्वारा पहने गए पुराने वस्त्रों को ही स्वीकार करता है। घनश्याम बाबा केवल उन्हीं वस्त्रों को पहनते थे जिन्हें पहले किसी साधु ने पहना हो, ऐसे वस्त्रों को वे अमूल्य मानते थे। एक अन्य रात्रि मैंने घनश्याम बाबा को अकेले बैठकर एक छोटे हारमोनियम पर सुंदर राग गाते सुना। भक्ति में लीन वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि कब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। यद्यपि मैं उनके गीत की भाषा नहीं समझ पा रहा था, उनकी भक्ति की मधुरता ने मुझे सब कुछ समझा दिया। कभी उनके स्वर हर्ष से झूम उठते और कभी वे अपने प्रियतम से विरह की भावना में विषाद करते। मुझे बताया गया था कि वे अपनी युवावस्था में एक राजा के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ थे। वे अपने गायन में इतने मग्न थे कि एक घंटा बीतने के पश्चात उनका ध्यान मुझ पर गया। मुझे देखकर वे पुलकित हो गए। कृष्णदास, तुम आ गए? फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम गोपीजन वल्लभ को सुलाने में मेरी सहायता करोगे? 50 वर्षों से प्रत्येक रात्रि वो ऐसा कर रहे थे, किंतु तब वृद्धावस्था के कारण उन्हें उठाकर सुलाने में अक्षम थे। उनकी सहायता करना मेरे लिए गौरव की बात थी। जब मैं जाने लगा, उन्होंने पूछा, कृष्णदास, आज रात तुम कहाँ सोओगे? यमुना के तट पर, जहाँ मैं प्रतिदिन सोता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे सिर पर एक चिंतित पिता के समान हाथ फेरने लगे। किंतु बाहर ठिठुराती ठंड है, आज रात तुम यहीं सो जाओ। किंतु बाबा जी, मैं प्रत्येक रात्रि वहीं सोता हूँ। किंतु आज तुम यहीं सो जाओ। वे कक्ष के बाहर एक छोटे गलियारे के फर्श पर सोते थे। घर के लोग उनके इर्द गिर्द चलकर उस रास्ते से घर में आते जाते थे। जब मैं फर्श पर सोया तो घनश्याम बाबा ने अपना एकमात्र कंबल मुझे ओढ़ा दिया। मैं ये कैसे सहन कर सकता था? उस फटे पुराने कंबल को मैंने उन्हें वापस सौंप दिया। ये आपका कंबल है, आप ही को इसका उपयोग करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऊंची आवाज में कहते उन्होंने कंबल लेने से मना कर दिया। आप वृद्ध हैं और मैं अभी युवा हूं, आपको ही इसका उपयोग करना चाहिए। मैंने फिर से उन्हें कंबल दे दिया, किंतु वे उछल पड़े, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक वाद विवाद शुरू हो गया। उनके जबरदस्ती करने पर मैंने वापस नदी के तट पर जाने की धमकी दी। मैंने कंबल नीचे रखा और दरवाजे की ओर चल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कंबल उठा लिया, ठीक है, मैं ही इसे ओढ़ूंगा। मैं उनके निकट लेट गया और सर्दियों की उस ठंडी रात को गर्माहट के लिए सिकुड़ कर सो गया। कुछ समय पश्चात गर्माहट का अनुभव होने पर मेरी नींद टूटी। मैंने फर्श पर लेटे हुए घनश्याम बाबा की ओर देखा, जो तूफान में हिलते पत्ते के समान सर्दी से कांप रहे थे। उनके ऊपर कोई कंबल नहीं था। मैं समझ गया कि उन्होंने मेरे सोने के पश्चात वो कंबल चुपके से मेरे ऊपर डाल दिया था। धीरे से मैंने वो कंबल उन्हें ओढ़ा दिया। जैसे ही कंबल ने उनका स्पर्श किया, वे उछल पड़े और चिल्लाए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए। फिर मैं यमुना पर चला जाऊंगा, मैंने जोर से कहा और दरवाजे की ओर चल दिया। वे फिर से उस कंबल को स्वीकारने के लिए मान गए, किंतु बाद में रात को पुनः गर्माहट पर मेरी नींद खुल गई। घनश्याम बाबा का दुर्बल शरीर सर्दी में बुरी तरह कांप रहा था। मैंने फिर से उन पर कंबल रखने का प्रयत्न किया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। घनश्याम बाबा जिनसे भी मिलते, उनकी सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता। पिछले 50 वर्षों में भगवान के लिए पानी लाने के अतिरिक्त वे उस छोटे से मंदिर के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। वास्तव में वे सपने में भी अपने विग्रहों को छोड़कर जाने का विचार नहीं करते थे। उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन और प्राण समर्पित कर दिए थे। एक दिन प्रातः जब मैं नदी से आ रहा था, एक सुनसान गली में वृद्ध घनश्याम बाबा को कठिनाई से चलते देखा। मैं सहायता के लिए भागा। बड़ी मुश्किल से वे पानी की एक बाल्टी उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, जो विग्रहों के स्नान के लिए उन्होंने यमुना से भरी थी। हर कुछ पग चलने के बाद वे थक कर खड़े हो जाते। बाबा जी, कृपया मुझे अपनी बाल्टी उठाने दीजिए, एक कठोर दृष्टि से देखकर उन्होंने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें इस प्रकार कठिन परिश्रम करता हुआ नहीं देख सकता था। कृपया मुझे उठाने दें, मैं युवा हूं, बिना किसी कठिनाई के मैं इसे 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचा दूंगा। आप वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं, आपको आधा घंटा लगेगा, कृपया मुझे ले जाने दें। उनके चेहरे पर बच्चे के जैसे मासूम मुस्कुराहट खिलाई और वे अनुरोध करने लगे, तुम गोपीजन वल्लभ के युवा मित्र हो, तुम सुख से रहो, मैं उनका बूढ़ा सेवक हूं, मेरा जीवन सेवा के लिए ही है, तुम जाओ और वृंदावन का आनंद लो, उसी में मेरी प्रसन्नता है। उनकी नम्रता से मेरा हृदय पिघल गया, लेकिन मन चिंतित हो उठा। कृपया मान जाइए, आपकी बाल्टी उठाने में मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। मैंने बाल्टी के हैंडल को पकड़कर खींचा। बाबा जी की पूरी देह पेड़ के समान तन गई। दृढ़ता से अकड़कर उन्होंने पूरी शक्ति से उस हैंडल को पकड़ लिया। उन्होंने उस प्रकार जकड़ लिया जैसे पहाड़ की चोटी से निस्सहाय लटकता व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता है जो उसे मौत से बचा कर रखती है। उन्होंने हताशा से मेरी आंखों में झांका। मैं एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति हूं, मेरी एकमात्र संपत्ति मेरी सेवा है। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनमें आंसू भर आए। यदि तुम भगवान की मेरी सेवा छीन लोगे तो तुम मेरे प्राण ही ले लोगे। कृपया मुझे जीने दो, कृपा करो। मेरा हृदय बैठ गया। मैं कर ही क्या सकता था। मैंने उन्हें उनका जीवन लौटा दिया और बाल्टी भी। किंतु जब उन्होंने देखा कि मैं उनके प्रति कितना चिंतित था, वे मेरे साथ मिलकर उसे उठाने के लिए राजी हो गए। चलते हुए वे हर मिनट मुझसे पूछते कि मैं ठीक तो हूं। एक रात्रि घनश्याम बाबा ने मुझे राधा रानी के गांव बरसाना जाने का सुझाव दिया। वे जोर देते हुए बोले, कृष्णदास, बरसाना का अनुभव करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे उत्साह को देखकर उन्होंने लज्जाते हुए कहा, जब तुम जाओ तो राधा रानी से कहना कि उनका तुच्छ सेवक घनश्याम उनका दर्शन करना चाहता है। मेरा हृदय गुमनामी में रहने वाले इन छोटे से वृद्ध व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ था। वे कोई बड़े विद्वान, विख्यात गुरु या सिद्ध योगी नहीं थे, किंतु वे एक सच्चे संत थे और उनकी नम्रता भगवान के प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति थी। एक समय मैं अन्य पश्चिमवासियों के समान सोचता था कि नम्रता स्वयं को तुच्छ समझने की ही एक चेष्टा है अथवा आत्मविश्वास के अभाव को दर्शाने वाली एक कमजोरी। यहाँ तक कि ये एक नकारात्मक सनक है जो आगे चलकर हीन भावना या निराशा में बदल सकती है। किंतु घनश्याम बाबा जैसे लोग के संग में मैंने पाया कि सच्ची नम्रता इसके विपरीत है, क्योंकि ये हमें एक ऐसी अनंत शक्ति से जोड़ती है जो हमारी स्वयं की शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वो है कृपा की शक्ति। सच्ची नम्रता का अर्थ है भगवान की महानता में गर्व का अनुभव करना और अन्यों के गुणों के प्रति सच्ची सराहना रखना। मैं समझने लगा कि सच्ची नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि मुझे कायर बनकर चुनौतियों से भागना होगा, अपितु सच्ची नम्रता मुझे निष्ठा, आदर, प्रेम और कृतज्ञता के साथ अपने पूरे साधन जुटाकर चुनौतियों पर विजय प्राप्ति हेतु चेष्टा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी नम्रता से हम भगवान के हाथों में एक निमित्त मात्र बनने का प्रयास करते हैं। स्वयं को दूसरों से अच्छा समझना हमें अपने जीवन की एक आवश्यकता लगती है। सच्ची नम्रता इस विकृत मानसिकता से परे एक गहरा सिद्धांत सिखलाती है। वो सिद्धांत हमें घमंडी बनने और अपने से छोटों पर रौब जताने से बचाता है। नम्रता हमें उन लोगों से ईर्ष्या करने से रोकती है जो हमसे अधिक निपुण हैं। जब व्यक्ति नम्र होता है तो वो कृतज्ञ हो जाता है तथा भगवान एवं उन सभी को श्रेय देता है जिन्होंने कभी उसकी सहायता की थी। एक नम्र हृदय वाला व्यक्ति सरलता से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है तथा और अधिक सीखने के लिए तैयार रहता है। नम्र बनना अपने अहम को मारना नहीं है, अपितु ऐसे सच्चे अहम को जगाना है जो सदैव ईश्वर तथा अन्य लोगों से प्रेम करने के लिए तत्पर रहता है। मैं सीख रहा था कि सर्वाधिक गहन रहस्य ये है कि जिस स्तर तक व्यक्ति में ये महान गुण होते हैं वो स्वयं को अत्यंत तुच्छ, भगवान का अंश और सभी का सेवक मानता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही घनश्याम बाबा के हृदय का एकमात्र आनंद थी। घनश्याम बाबा मुझे अब तक मिले सर्वाधिक धनी और सुखी लोगों में से एक थे। ऐसे सरल व्यक्ति जो सहज हृदय से भगवान से प्रेम करते थे। यहाँ पर आठवां अध्याय समाप्त होता है।